नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत, मेधावियों को वितरित करेंगे डिग्रियां। केंद्र ने कहा, देश की रिफाइनरियों में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लागू होने से गांवों में सुनिश्चित हो रही स्वच्छता की राह। और प्रदेश के सभी न्यायालयों में आज आयोजित की जाएंगी राष्ट्रीय लोक अदालतें। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति सतप्रकाश बंसल ने बताया कि राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सहित अन्य गणमान्य लोग भी समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान 12 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 524 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। श्री राधाकृष्णन धर्मशाला स्थित युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे।
अच्छा है विश्वविद्यालय के लिए कि इस बार हमें उपराष्ट्रपति जी का आशीर्वाद मिल रहा है। 14 मार्च को उनके साथ जो है माननीय गवर्नर हिमाचल प्रदेश वो भी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जयराम ठाकुर जी होंगे, जो पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी वो होंगे। उपराष्ट्रपति वो केवल 12 बच्चे हैं जिनको गोल्ड मेडल देंगे, 524 बच्चे हैं जिनको हम डिग्री देंगे।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि देश पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि सभी रिफाइनरियां 100% क्षमता से काम कर रही हैं और रिफाइनरियों में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा कि घरेलू पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी की आपूर्ति बिना किसी कटौती के हो रही है।
भारत में पेट्रोल और डीजल का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी या उससे अधिक पर चल रही हैं। रिफाइनरीज के पास एडिक्वेट इन्वेंटरी है क्रूड की और इसके अलावा सप्लाईज आर आल्सो मेंटेन्ड और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है।
इधर प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल व एलपीजी की पर्याप्त मात्रा है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने शिमला में बताया कि प्रदेश में रसोई गैस और व्यावसायिक सिलेंडरों की भी कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार ने इसके लिए नागरिक आपूर्ति के तहत स्टॉक जारी किया है। मुख्य सचिव ने बताया कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है। उधर चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि चंबा में घरेलू रसोई गैस पेट्रोल व डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और नियमानुसार इन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उपभोक्ताओं को की जा रही है। उन्होंने लोगों से इस संबंध में भ्रामक प्रचार से बचने की अपील की है।
इस समय पे किसी भी प्रकार का पैनिक करने का या होर्डिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहे, सप्लाईज हमारे पास सफिशियंट है और रेगुलरली जो हमारा स्टॉक है वो भी रिफिल जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज है उनके माध्यम से हो रहा है। आगे भी वी आर श्योर कि रेगुलर सप्लाईज लोगों तक पहुंचती रहेंगी। जो ओनली डिफरेंस है कि आपका 21 दिन से अब इसको 25 दिन की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जो कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, परंतु क्योंकि प्रिपेयर्डनेस भी आवश्यक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति लंबे समय तक चलती है तो उसी के अंतर्गत ये दिशा निर्देश इशू किए गए हैं।
हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। क्रॉस वोटिंग और जोड़ तोड़ की आशंका के बीच हरियाणा कांग्रेस ने अपने 31 विधायकों को शिमला भेज दिया है। ये सभी विधायक शिमला के समीप कुफरी के एक निजी होटल में ठहरे हुए हैं। प्रदेश सरकार ने विधायकों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं और होटल के बाहर पुलिस का पहरा लगाया गया है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और तब तक कांग्रेस विधायकों के शिमला में ही ठहरने की सूचना है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। शेष समाचारों में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य लगभग पूरा होना शिक्षा जगत के लिए सकारात्मक संकेत है और इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। कल देर सायं धर्मशाला पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस को RTI के दायरे से बाहर करने के फैसले का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय प्रदेश हित में नहीं है और इससे एजेंसियों के दुरुपयोग की आशंका बढ़ सकती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर दुनिया के कई देशों पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि भारत में गैस और तेल की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी और इसके लिए केंद्र सरकार लगातार संबंधित देशों के संपर्क में है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में हिमाचल ने शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए सिक्किम के बाद देश के दूसरे खुले में शौच मुक्त राज्य के रूप में जगह बनाई है। मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 1,96,000 से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90% आबादी के साथ राज्य ने ग्रामीण स्वच्छता में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और वर्ष 2016 में खुले में शौच मुक्त राज्य बना। राज्य के 78% गाँवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है, जबकि 86% गांवों में ग्रे वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के ऊना जिले में भी मिशन के तहत बेहतरीन कार्य किया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए ऊना जिला में 2,83,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इस राशि से 933 व्यक्तिगत और 22 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, जबकि 14 कचरा पृथककरण शेड भी बनाए गए हैं। मिशन द्वारा जिला के 4 विकास खंडों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाइयां भी स्थापित की गई हैं, जो चालू स्थिति में हैं। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपने अपने क्षेत्र में घर घर से ठोस कचरा उठाकर इसके प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, जबकि घरों से निकले गंदे पानी के लिए पक्की नालियां और सोख पिटों का निर्माण भी किया गया है। शिक्षण संस्थानों, युवक मंडलों, महिला मंडलों और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा स्वच्छता जागरूकता अभियान भी समय समय पर आयोजित हो रहे हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने पिछले वर्ष अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से प्रभावित हिमाचल प्रदेश सहित देश के 6 राज्यों के लिए 1,912 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के लिए 288 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। मंत्रालय ने बताया कि यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF में जारी की गई उस धनराशि के अतिरिक्त है जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है। प्रदेश उच्च न्यायालय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज राज्य के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न अदालतों द्वारा अभी तक लगभग 82,000 मामलों की पहचान की गई है। इस दौरान ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में MB चालान मामलों में ई कोर्ट डिजिटल के माध्यम से कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, कांगड़ा के जवाली स्कूल में शिक्षकों ने खुद करवाई सामूहिक नकल, परीक्षा केंद्र रद्द, 4 निलंबित। इसी अखबार की एक अन्य खबर है, बिजली प्रोजेक्टों पर भू राजस्व लगाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार से जवाब तलब। दिव्य हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, 14 माह में लोकतंत्र की मंडी में बिक गए पूर्व विधायक, पंजाब केसरी के शब्द हैं, हिमाचल प्रदेश में वित्तीय स्थिति पंजाब से बेहतर। जबकि दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिमाचल की आर्थिक स्थिति बेहतर, पंजाब अपनी चिंता करें। हिमाचल दस्तक की एक खबर है, मई में बिना किसी विघ्न के एक साथ संपन्न करवाए जाएंगे पंचायत चुनाव। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, लाहौल में तीसरे दिन बर्फबारी से पर्यटक बढ़े, 2 दिन में करीब 25,000 सैलानी पहुंचे मनाली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत, मेधावियों को वितरित करेंगे डिग्रियां। केंद्र ने कहा, देश की रिफाइनरियों में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लागू होने से गांवों में सुनिश्चित हो रही स्वच्छता की राह। और प्रदेश के सभी न्यायालयों में आज आयोजित की जाएंगी राष्ट्रीय लोक अदालतें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।